रविवार था। हवेली में एक अलग सी शांति फैली हुई थी। आंगन में धूप की हल्की परत बिछी थी और नीम के पेड़ के नीचे रत्ना देवी झूले पर बैठी थीं। हाथ में मोतियों की माला, होठों पर बुदबुदाते मंत्र, पर निगाहें हर थोड़ी देर में ऊपर बालकनी की तरफ उठ जातीं, जहां रम्या का कमरा था। अंदर रम्या का कमरा, टेबल लैंप बंद, पर्दे आधे खुले। रम्या आईने के सामने बैठी थी, बाल खुले, होठों पर हल्की लिप ग्लॉस की परत और गले में पतली सी चेन लटक रही थी। वो खुद से मुस्कुरा रही थी, मोबाइल कान से लगाए। उधर से गगन की आवाज आ रही थी, तो आज छुट्टी है और तुम मुझे मिस भी नहीं कर रही? रम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कौन बोला नहीं कर रही, बस बोल नहीं रही थी। गगन हंसा, मतलब अंदर ही अंदर कर रही थी? हाँ, रम्या ने आंखें घुमाई, पर तुम्हारे जैसे शरारती लड़के को ये बात समझाना मुश्किल है। तो फिर सीधा मिलकर समझा दो, गगन ने हंसते हुए कहा। चलो ना, आज मिलते हैं मंदिर के पीछे वाले पार्क में। रम्या ने तुरंत मना किया। नहीं नहीं, नानी घर में है और वो जब तक आंगन में बैठी रहती हैं पूरा घर उनकी नज़र में रहता है, बाहर निकलना आसान नहीं है। गगन की आवाज़ थोड़ी नरम हो गई। बस आधे घंटे के लिए, मैं तुझे दूर कहीं नहीं ले जाऊंगा, तू अपनी पसंद की जगह बता दे। रम्या कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, तुम्हें समझ नहीं आता गगन, अगर नानी ने देख लिया ना तो घर में हंगामा हो जाएगा। पिछली बार याद है, बस फोन पर बात करते पकड़ लिया था। गगन मुस्कुराया। मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है कि तब तूने 3 दिन तक मुझसे बात नहीं की थी, रम्या ने होंठ दबाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी वजह से डांट खाई थी। तो आज मेरी वजह से मुस्कुरा भी ले, गगन ने फुसफुसाकर कहा। देख, तेरे चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो फोटो में भी नहीं दिखती, वो तो बस असली में देखने लायक होती है। रम्या का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, उसने धीरे से कहा, तुम भी ना बातें ऐसे करते हो जैसे फिल्म का हीरो हो। गगन बोला, तो तू भी तो मेरी हीरोइन है। रम्या हंसी रोक नहीं पाई। तुम्हें पता है ना, अगर माँ घर पर होती तो ये बातें कभी नहीं कर पाती। माँ तो दादी के पास घर गई हैं, है ना, बस इसलिए तो आज मौका सही है। रम्या कुछ पल चुप रही। बाहर नीम की पत्तियां हवा में सरसराईं, फिर वो बोली, ठीक है, पर अगर नानी ने रोक लिया तो? तो कह देना मैं तुम्हारी बोरियत भगाने आया था, गगन ने मजाक में कहा। रम्या मुस्कुराई, तुम्हें नानी के सामने देखकर तो मजा आ जाएगा, वो तो तुम्हारा पूरा चरित्र वहीं सुन लेंगी। गगन हंस पड़ा। चलो फिर नानी को भी मिलने की आदत डाल दो, रम्या झेपते हुए बोली। बस करो ना गगन। कुछ पल खामोशी रही, फिर रम्या ने धीरे से कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन 5 मिनट ही रुकूंगी। गगन की आवाज़ में चमक आ गई। बस तू आ जा, वक्त की फिक्र मैं कर लूंगा। कॉल कट हुआ। रम्या ने मोबाइल मेज पर रखा और जल्दी से बाल बांधने लगी। उसने अलमारी से हल्की गुलाबी कुर्ती निकाली, जिसे पहनते ही उसका चेहरा और खिल गया। आंखों में हल्की काजल की लकीर, होठों पर मुस्कान, वो सचमुच किसी सपनों की लड़की जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पर्स उठाया और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, बाहर से झूले की चरचर की आवाज आई। रम्या झट से रुकी, पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। रत्ना देवी अब भी वहीं बैठी थी, उनके पैरों के पास बिल्ली खेल रही थी और आंखें सीधी ऊपर की तरफ। रम्या ने धीरे से मन ही मन कहा, हे भगवान, अब बस यही रुकावट रह गई थी। वो कमरे से बाहर आई, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, पर जैसे ही आंगन में पहुंची, रत्ना देवी ने अपनी तीखी मगर सधी हुई आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? रम्या खिठक गई। वो नानी, बस ऐसे ही थोड़ा बाहर तक जा रही थी। बाहर? रत्ना देवी ने भौहें उठाई। क्यों, तबीयत ठीक नहीं क्या? आजकल धूप भी बहुत तेज है, रम्या झट से बोली। नहीं नानी, बस थोड़ी हवा खाने जा रही थी, सिर भारी लग रहा है, रत्ना देवी ने झूले को रोकते हुए कहा। तो अकेले कैसे जाओगी? शकुंतला भी तो ससुराल गई है, किसी को साथ ले जाओ या फिर मुझसे कह दो, मैं नौकर को भेज देती हूँ। रम्या का गला सूख गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से श्यामली की आवाज आई। अरे मैं साथ जा रही हूँ ना माँ जी, रम्या ने राहत की सांस ली। श्यामली हल्की मुस्कान लिए आगे आई। असल में रम्या का सिर थोड़ा भारी है, तो सोचा इसे थोड़ी हवा लगवा दूं, पास ही मंदिर के आगे तक जाएंगे और लौट आएंगे। रत्ना देवी ने श्यामली को गौर से देखा। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, आजकल का जमाना भरोसे लायक नहीं। श्यामली मुस्कुराई। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं हूं ना इसके साथ, रम्या ने नानी की तरफ छिचकती मुस्कान दी। जी नानी, बस थोड़ी देर में लौट आऊंगी, रत्ना देवी ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन रास्ते में कुछ खाना पीना मत लेना, बाहर की चीजें जहर होती हैं, समझी? रम्या ने जी कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। पीछे श्यामली उसकी चाल देख मुस्कुरा रही थी। इतनी जल्दी तो तुम स्कूल के लिए भी नहीं निकलती, रम्या हंसी दबाते हुए बोली। वो अलग बात है मामी, आज तो मिशन ही पूरा करना है, श्यामली ने चुटकी ली। कौन सा मिशन? रम्या ने आंखें झपकाई। बस फ्रेश एयर वाला, दोनों हंस पड़ी। बाहर हवेली के फाटक तक पहुंचते ही रम्या ने धीमे स्वर में कहा, थैंक यू मामी, आप ना होती तो आज फिर फंस जाती। रत्ना देवी ने माला एक तरफ रखी और फोन कान से लगाया। हाँ, शकुंतला बोल रही है ना? उधर से शकुंतला की आवाज आई। हाँ माँ, मैं बस अभी ससुराल से निकली हूँ, वक्त पर घर आ जाऊंगी। वैसे रम्या क्या कर रही है?
रत्ना देवी ने झूला धीरे धीरे झुलाते हुए कहा। वो कह रही थी सिर भारी है, तो श्यामली उसे थोड़ी हवा खिलाने ले गई है। शकुंतला ने हल्का सा रुक कर पूछा, कहाँ गई हैं दोनों? रत्ना देवी ने माथे पर बल डालते हुए कहा, कहा तो मंदिर के आगे तक, पर अभी तक लौटे नहीं है। उधर से शकुंतला की आवाज में हल्की चिंता झलक पड़ी, माँ आप जरा ध्यान रखिएगा, रम्या अकेली कहीं दूर न चली जाए। रत्ना देवी ने शांत स्वर में कहा, तू निश्चिंत रह, मैं किसी को भेज देती हूँ देखने। आजकल लड़कियां हवा खाने के नाम पर जाने कहाँ निकल जाती हैं। उन्होंने फोन रख दिया, पर उनके चेहरे पर अब वही शांति नहीं थी। आंखें अब हवेली के फाटक की तरफ टिक गईं, जहां से रम्या और श्यामली कुछ देर पहले ही निकली थी।